ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ठीक है, रोग हो गया, दवाई ले रहे, तो दवाई लेते समय भी हमको खान पान में ध्यान रखना पड़ता है। यदि खान पान में ध्यान रखे नहीं रखेंगे तो वो दवाई लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि हमारा जीवन युक्ताहार विहार है तो दवाई की जरूरत नहीं, दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार। देखो, विहार भी युक्त होना चाहिए। विहार किसको कहते हैं? आना जाना, उनको क्या कहते हैं? विहार। हम कहां जा रहे हैं और जा रहे हैं तो क्या करने के लिए जा रहे हैं? हमारे जो पैर है उससे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बात का विवेक हमको होना चाहिए। यदि हमारा ये जो पैर है वो सत्कर्म के प्रति या मंदिर आश्रम स्वाध्याय ऐसे अच्छे जो कर्म है उनके प्रति वो गमन करते हैं तो वो उसकी सार्थकता है। तो आहार और विहार युक्त होना चाहिए, कर्म भी चेष्टा भी युक्त होनी चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में चेष्टा युक्त हो। और जिसका स्वप्न और अवबोध युक्त हो, स्वप्न से अभिप्राय है सोना और अवबोध से अभिप्राय है जागना। जो नियम से उठता है और नियम से सोता है उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये निश्चित है। वर्तमान में हालत ये है कि जो खास करके जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं 12 बजे तक वो सोते नहीं है। क्या करते हैं? तो कहते टेलीविजन देख रहे हैं बस, लोगों को और कोई कार्य ही नहीं है। जैसे ही टाइम मिला तो टेलीविजन खोल लिया। अब पहले ये था कि टेलीविजन नहीं था तब लोग पठन कर रहे थे और इस समय हालत यह है कि कोई पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है। सांसारिक कार्य में इतने उलझे हुए हैं और उस उलझन से थोड़ा ही समय मिलता है तो ये टेलीविजन तैयार रहता है। वो कहता है हमको खोलो, उसको खोल करके बैठ जाते और उसमें इतने रत रह जाते हैं कि कब क्या हुआ टाइम का भी पता नहीं चलता है। यदि हमारे संस्कार को सबसे ज्यादा दूषित यदि किया हो और हमारी वृत्ति को सबसे ज्यादा डाइवर्ट किया हो तो वो किसने? टेलीविजन ने और फिल्म ने। इसलिए हम रात को 12 बजे सोएंगे तो सुबह में कब उठेंगे बताइए? 8 बजे तो लोग कहेंगे कि जल्दी उठ गए, ये बम्बई वाले कहेंगे। जब तक 10 नहीं बजेंगे तब तक ये कहेंगे कि नहीं अब सुबह हुई। देखिए, अपने यहां कहा गया ब्रह्म मुहूर्ति या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा है सोना है वो पुण्य का क्षय करने वाला वो सोना हो जाता। उस समय सोना नहीं चाहिए। क्या होता है? पुण्य क्षय होता है। जो किया हुआ पुण्य है उनका क्षय हो जाता है, नया नहीं बनता है, किंतु जो किया हुआ है उनका क्षय हो जाता है। और जो निषिद्ध कर्म है उनको ही तो पाप कहते हैं, और विहित कर्म को ही क्या कहते है? पुण्य कहते हैं। इसलिए समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, तो उसको कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य। ऐसे व्यक्ति का शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आप देखिए कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक व्यक्ति मिले थे 50 के ऊपर के थे, तो वो कहते थे कि आज तक मैंने कोई दवा नहीं ली, औषध नहीं खाया, मेरा शरीर ऐसा ही है। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि हमारा शरीर रोग रहित हो, तो ये कब हो सकता है कि यदि हम संयम से रहे। इसलिए कहा शरीरम में विचर्षणम, ओमकार से प्रार्थना की गई कि मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम यानी रोग से रहित हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है वो धर्म का साधन है, और यदि साधन ही गड़बड़ा गया तो आप कहीं जाने के लिए तैयार हुए और आपके मन में निश्चय है कि मेरी गाड़ी ठीक है, रेलवे स्टेशन पहुंचना है या एयरपोर्ट पहुंचना है, तो आपने सोचा कि ठीक है चलो एक घंटा से पहले निकल जाएंगे, वहां पहुंचने में एक घंटा लगेगा, और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो ही नहीं रही है, तो बताओ फिर कैसे पहुंचेंगे? क्यों? कि साधन है वही गड़बड़ा गया, तो साधन फिर जो साध्य को प्राप्त नहीं करा सकता है। इसलिए साधन क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तभी हो सकता है। और हमारा ये जो शरीर है वो जब तक रोग रहित नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारा जो है मन स्वाध्याय में नहीं लगेगा। और इस शरीर से क्या करना है? वेदांत का स्वाध्याय, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। इसलिए स्वाध्याय के लिए शरीर की स्वस्थता चाहिए। इसलिए शरीर की स्वस्थता ओंकार से मांगी गई कि हमारा शरीर रोग से रहित हो। तो ये तो हुआ शरीर और शरीर की बात। अब देखिए हमारी इंद्रिया है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। देखो इसके विषय आगे बताया जा रहा है, जिह्वा मे मधुमत्तमा, ऐसा कहा गया। देखो ये कहते हैं जिह्वा मे मधुमत्तमा, ओंकार से प्रार्थना की गई मे जिह्वा यानी मेरी जो जिह्वा है वो मधुमत्तमा। जिह्वा से यहां पर अभिप्राय है वागिंद्रिय, वागिंद्रिय जो हमारी वागिंद्री है वो मधुमत्तमा हो यानी मधुर भाषिणी हो। ठीक, यहां केवल वागिंद्री ही शब्द प्रयोग किया है, जिह्वा का ही जो है प्रयोग किया है, किंतु उपलक्षण से पांचों कर्मेंद्रिय ग्रहण कर लेनी है। अब जिह्वा उनमें प्रधान है, कर्मेंद्रियों में प्रधान कौन है? जिह्वा, जीव, वागिंद्री वही प्रधान है, और ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु और श्रोत्र प्रधान है, और कर्मेंद्रिय में जिह्वा प्रधान है। इसलिए जो प्रधान है उसका यदि नाम ले लिया जाता है तो अप्रधान है उनका भी ग्रहण हो जाता है। जैसे पहले एक परंपरा थी कि किसी की यदि शादी हो रही है तो संबंधियों को निमंत्रण दिया जाता था, तो संयुक्त तो परिवार होता था, तो पूरे परिवार में 8-10 व्यक्ति हुआ करते थे, 12 व्यक्ति हुआ करते थे, 15 तक हुआ करते थे। आजकल जैसा नहीं है, हम दो और हमारे दो, सब साथ में रहते थे। तो जो घर के जो मुखिया थे उनको बता दिया जाता था कि आप पूरे परिवार से आपको शादी में भोजन के लिए आना है। तो वो जो प्रधान को बता दिया जाता था तो निमंत्रण पूरे परिवार के लिए मान लिया जाता, फिर उनके जो बच्चे हैं या उनका छोटा भाई है वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं कहा है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। आजकल की हालत है, आपको सबको कहना पड़ेगा, सबको नहीं कहेंगे मेरे को नहीं कहा है तो मैं नहीं आऊंगा, मेरे को पत्रिका नहीं है, मेरा नाम नहीं लिखा है, होता है ना। तो प्रधान के अंदर जो गौण है उन सब का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए यहां पर जो है जिह्वा से अभिप्राय है हमारी कर्मेंद्रिया, और कर्मेंद्रियों में खास करके ये जो जिह्वा है यदि वो मधुर भाषणी हो जाए तो सारी इंद्रिया जो है उसके अंदर भूत आ जाती है, तो इंद्रियों के भी कर्म जो है वो सही ही हो सकते। मधुर भाषण, देखिए हमारे यहां नीति का शास्त्र में कहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। देखो प्रिय वाक्य किसको अच्छा नहीं लगता, प्रिय वाक्य, ठीक है ये एक अलग बात है, ये जो बात है इस विषय की नहीं है, लेकिन एक व्यावहारिक बात कर रहा हूं मैं कि व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि यदि आपको जो है कोई प्रिय वाक्य सुनाता है तो हमको अच्छा लगता है। तो जैसे हमको प्रिय वाक्य अच्छा लगता है तो सबको प्रिय वाक्य अच्छा लगता है, और सभी जंतु तुष्ट होते हैं। देखिए केवल मनुष्य की बात नहीं है, पशु के लिए भी आप जो है अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा जो है उनको बुलाने के लिए जो वाक्य जो संकेत करते हैं वो संकेत को पार करके पशु भी आपके ओर अभिमुख हो जाता है, और ऐसा संकेत करते हैं भगाने का तो वो पशु भी भाग जाता है। तो सभी जंतु प्रसन्न होते तो फिर क्यों ऐसा ना बोले, वचन का दरिद्रता, तो एक व्यावहारिक बात अलग। किंतु यहां जो है मधुर भाषण का अर्थ है जो मधुर वाक्य है उनका उच्चारण करें, यहां तो अभिप्राय यह है मेरी जिह्वा यानी जीभ मधुर भाषण करे। संसार में मधुर क्या है, वेद है, वेद वाक्य क्या है मधुर है, मधु से संपृक्त है। ये जो वेदवाणी है ना वो मधु, जिसको अंग्रेजी में हनी कहते हैं, वो मधु कितना मीठा होता। तो मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो इसका मतलब है कि मेरी जिह्वा के द्वारा सदा वेद पाठ होता रहे, वेदोच्चारण होता रहे, तो वो मधुर भाषण है। और वेदवाणी को हमारे यहां कहा वो मधु से सन्न है। पुष्पदंताचार्य जी भगवान शंकर के लिए कहते मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितवत। कहते हैं भगवान आप जो है मधुस्फीता वाच, जो मधुर से मधु से भी जो मधुर है ऐसी वाणी के आप निर्माण करता है, आपने वो बनाई है निर्मितवत। इसलिए वेदवाणी कैसी है, मधुर है, मधुर है यानी कि हितकारी है। इसलिए वाणी से हितकारी वचन बोलना ही जो है वाणी का तप भी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में तप का स्वरूप बताया, शरीर से होने वाला तप, मन से होने वाला तप और वाणी से होने वाला तप। तो वहां पर वाणी से तप का स्वरूप बताया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चेव वांग्मयम तप उच्चते, ऐसा कहा। अब घर में जाकर के देखिए 17वें अध्याय में श्लोक है, ये वाणी का तप है। वाणी का तप बिल्कुल बोलना नहीं, वो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं एक महीना के लिए बोलूंगा नहीं, अब वो बाहर से नहीं बोलेगा, लेकिन वो जो बोलेगा उससे तो अच्छा है कि वो वाणी से बोले। तो ये नहीं कि वाणी से मौन रहे और इनडायरेक्टली जो है कुछ करता रहे। अनुद्वेग करम वाक्यम, देखिए वाणी का तब भगवान ने बताया, ऐसा वाक्योच्चारण जो सुनने वाले के मन में उद्वेग उत्पन्न करे। अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग नहीं होना चाहिए। वो वाक्य कैसा हो सकता है? ऐसा वाक्य तो आप किसी को प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करें, वो भी अनुद्वेग कर्म है, लेकिन वो यहां वाणी का तप नहीं है। किसकी चापलूसी करना, वो वाणी का तप नहीं है। किसी की चापलूसी करो तो वो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, वो मधुर भाषण नहीं है। वो तो फिर उसके लिए कहा गया ना, हमारे मुख में राम और बगल में छुरी, वो भी हो सकता है। अनुद्वेग कर वाक्य का अर्थ है सत्यम प्रिय और हित, ये तीनों होने चाहिए, एक एक भी नहीं। सत्य भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए। ये तीनों विशेषणों से युक्त जो वाक्य है उस वाक्य को कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। ऐसे अनुद्वेग करम किसी को जो है चोट पहुंचाने वाला न हो, ऐसा सत्यम प्रिय और हितकारी वाक्य को का ही बोलना जो है वाणी का तप है। केवल सत्य हो किंतु प्रिय और हितकारी न हो तो वो नहीं बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे को तो सबको सत्य बोल देने की आदत है, कहते ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, मैं तो मुख पर ही कह देता हूं। लेकिन यदि तुमको कोई मुख पर कह देंगे तभी तुमको पता चलेगा कि मुख पर कह देने का क्या लाभ होता है, चेहरा बिगड़ जाता है। केवल सत्य ही होना चाहिए, इतना ही। देखो मनुस्मृति कार ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम सत्यम च नान्द्रितम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य भी हो और साथ साथ में प्रिय भी हो। और कहा यदि सत्य अप्रिय है तो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, इसलिए सत्य के साथ साथ प्रिय भी होना चाहिए, सुनने में अच्छा भी लगना चाहिए। और केवल सुनने में अच्छा लगे इतना ही नहीं, वो हितकारी भी होना चाहिए, भविष्य में भी वो हितकारी होना चाहिए। वर्तमान में भी केवल नहीं, भविष्य में भी वो हितकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य का उच्चारण करना वो वाणी का तप है। और स्वाध्याय वेद का अध्ययन करना ये वाणी का तप है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, वो वाणी का तप है। इसलिए हमारी वाणी जो है मधुर भाषिणी हो, यानी कि ये वेद का ही उच्चारण करने वाली हो, वेदाध्ययन में ही हमारी रुचि हो। अब यदि इसी उद्देश्य से हमारे ये जो कर्मेंद्रिया है वो स्वस्थ हो और मधुर भाषिणी हो तो व्यवहार में भी तो वो रहेगी रहेगी। व्यवहार भी ऐसा ही होगा, फिर व्यवहार गलत थोड़ा ना होगा हमारा उद्देश्य जब ये हो जाए तो। इसलिए कहा मैं जिह्वा मधुमत्तमा, जो वागेन्द्रीय रूप ये जो मेरी जिह्वा है और उसके साथ साथ ये और भी जो कर्मेंद्रिया है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, और वो भी जो है अच्छे काम करने वाले हो। हम हाथ से ऐसे कार्य करें जो लोकोपयोगी हो, पैर से हम चले गमन वहां करें जो हमारे लिए हितकर हो। इसलिए यहां पर जो है सभी इंद्रिया के द्वारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी चक्षुरादि इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ये शरीर मन सब परमात्मा की ओर बढ़े। तो ये वागेन्द्रिय के उपलक्षण से सभी कर्मेंद्रिया ले लीजिए, और आगे आगे जो है ज्ञानेन्द्रिया के लिए कह रहे हैं, देखो कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम। आगे कहा कि कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्णाभ्याम यानी श्रोत्राभ्याम कानों के द्वारा, भूरि विश्रुवम, भूरि का अर्थ है बहुत, विश्रुवम यहां अभिप्राय है वि अश्रुवम व्यश्रुवम, हम बहुत सुने, तो बहुत सुने यानी बहुत से वो पुष्कर मात्रा ऐसा जैसे वो नहीं लेना, बहुत सुनी यानी बार बार हम इस वेदवाणी को सुने, हम कभी प्रमाद न करें, स्वाध्याय में हम प्रमाद न करें। कई लोग कहते हैं बार बार एक ही बात क्यों सुनना, ऐसा भी कहते हैं। तो ये जो वेद का अध्ययन है, वेद पाठ है, वो प्रतिदिन होना चाहिए। देखो जैसे हमको प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता रहती है, प्रतिदिन स्नान की आवश्यकता रहती है, यदि हम कहे कि ये रोज रोज क्यों स्नान करना है, तो हफ्ता दिन मत कीजिए, पता चल जाएगा उससे क्या नुकसान होता है। तो इसलिए जैसे रोज प्रतिदिन स्नान की आवश्यकता है, भोजन पान की आवश्यकता है, वैसे ही ये जो है वेद पाठ की और वेदाध्ययन की भी आवश्यकता है, स्वाध्याय की भी रोज ही आवश्यकता है। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, ये वेदाध्ययन करना चाहिए। और यहां के संदर्भ में यदि हम कहें तो यहां जो वेदाध्ययन और स्वाध्याय, वेदांत का स्वाध्याय जो होता है, उसका प्रतिदिन लाभ लेना चाहिए। यदि हम अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियों को और कर्मेन्द्रियों को यदि हम मधुर बनाना चाहते हैं, तो एकमात्र यही उपाय है कि हम वेद और वेदांत का स्वाध्याय करें। तो इस सर्वत्र तो मिलता नहीं है ना, स्कूल कॉलेज में बच्चों को भी तो नहीं मिलता है, ऐसे स्थल जो है वो तो बहुत ही कम है। देखिए इस बंबई के अंदर जितने थिएटर है, इतने सत्संग भवन है क्या, बताओ थिएटर कितने होंगे? हम जहां तक मानते हैं तो सैकड़ों की संख्या में होंगे, लेकिन ऐसे जो है, ऐसे केंद्र जहां पर वेदांत का विचार होता हो वो कितने हैं? बहुत गिने चुने, आप जो है गिन सकते हैं, बहुत कम है। तो और वो भी जो है यदि हम छोड़ दे रहे, तो फिर हमारे लिए उद्धार का और कोई जरिया नहीं रह जाता है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। स्वाध्याय करना वो क्या है? वाणी का तप है। आप कहेंगे कि स्वामी जी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, मत आए समझ में, न भी आए, लेकिन सुनना छोड़ना नहीं है, सुनते ही रहना चाहिए। अब देखिए, आप आप सब लोग को अनुभव होगा ही कि व्यवहार में कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसका इतना अभ्यास हो जाता है तो आप आंख मूंद करके भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हमको समझ में न आए तो दो चार पांच दिन, हफ्ता दस दिन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन फिर ये जो है वेदवाणी ऐसी है, ऐसी मधुर है कि वो धीरे धीरे वो हमारे अंतकरण में उतरने लगती है, तो हमको फिर समझ में भी आ जाता है। इसलिए तो ये प्रार्थना है कि हमारी इसमें प्रवृत्ति हो, इसलिए ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना जो पहले बोली जाती है वो समय का व्यय नहीं है, इसमें ये भावना है कि हम इसमें लगे, हमारा मन इसमें लगे। और मन को जो है, मन अपने आप नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है। कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो मन को तो क्या करना है, लगाना पड़ेगा। देखो मन का स्वभाव है नीचे की ओर बढ़ना और नीचे की ओर बहना, तो वो तो प्रयत्न पूर्वक ही जो है संस्कार जो है प्रयत्न पूर्वक लाए जाते हैं। कुसंस्कार के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को जो है गलत भाषण सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, किंतु संस्कार प्रदान करने के लिए ही जो है प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कहा कि कर्णाभ्याम भूरि विश्रोम, यानी कानों के द्वारा हम बहुत सुनते रहे, बार बार सुनते रहे। तो ये जो है कान से अभिप्राय है सारी ज्ञानेन्द्रिया, और जिह्वा से अभिप्राय है सारी कर्मेन्द्रिया और शरीर। तो पूरा जो है कार्यकरण संघात यहां पर आ गया। तो ये पूरा अभिप्राय यह है कि हमारा ये जो पूरा कार्यकरण संघात है, ये ओमकार, ओमकार से भावना की गई कि हमारा कार्यकरण संघात आत्मज्ञान के योग्य बने, ये भाव बताया गया। अब आगे जो है ओमकार के विषय में ही एक बात है, वो भगवान की कृपा होगी तो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।